इस प्रकार का मोक्ष जिसमें आत्मा भगवान के निराकार ज्योति में लीन हो जाता है और अपने अस्तित्व खत्म करने का प्रयास करता है, खत्म कभी नहीं हो सकता आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अमर है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, न ये राजा नहीं थे, अब भी हम तीनों हैं, और नहीं ऐसा कोई समय आएगा भविष्य में जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा और ये राजा नहीं रहेंगे। तो श्री कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं। शरीर की बात कैसे करेंगे? क्योंकि जब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि हम सब नहीं थे, तो जन्म के पहले सब कहां थे? नहीं थे, वो शरीर नहीं था जन्म के पहले। और जब भगवान कहते हैं कि न ऐसा समय आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे, तो मृत्यु के बाद राजा लोग कहां गए? खत्म हो गया उनका शरीर। लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं हम तीनों हमेशा हैं। भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, समझ सकते हैं कि ये भगवान है, लेकिन अर्जुन और ये अन्य राजा, इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा की बात कर रहे हैं। तो आत्मा का व्यक्तित्व, अस्तित्व, इंडिविजुअलिटी, वो सनातन है। आत्मा का अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। गीता के 15वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं, मेरे जो जीव हैं वो मेरे अंश हैं। सनातन मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति ममय वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव मेरे अंश हैं। कैसे? सनातन मतलब सनातन वो मेरे अंश हैं। ऐसा नहीं कि पहले मेरे अंश थे और बाद में पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले मेरे अंश थे और बाद में मैं ही वो भगवान बन जाएंगे, नहीं, पहले भी अंश थे, अब भी अंश हैं और भविष्य में भी अंश रहेंगे। अंश अंश ही रहता है, पूर्ण पूर्ण ही रहता है, और अंश और पूर्ण के बीच में एक प्रेम का संबंध रहता है जिसको भक्ति कहते हैं। अंश सनातन है, पूर्ण सनातन है, और अंश और पूर्ण का संबंध सनातन है, और तीनों का जो स्थान है, जो धाम है, वो भी सनातन है। तो जो निराकारवादी इस तरह से मोक्ष प्राप्त करके अपने अस्तित्व को ही नष्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में सोचकर ही भक्तों को बहुत बुरा लगता है। कैवल्यम नरकायते, ये कैवल्य मतलब लीन हो जाना, ये नरक के बराबर है। क्यों भक्त ऐसे अस्तित्व के नाश करने से घृणा क्यों करता है? क्योंकि भक्त जानता है कि जीवन का मतलब है भगवान की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना। अगर भगवान की सेवा की संधि नहीं मिले तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं, कोई मायने ही नहीं रखता। इससे अच्छा कि हम पत्थर बने। जब प्राण है तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छा कि हम कोई जड़ वस्तु बने। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है, भगवान ने हमारे हमें जो बनाया उसका उद्देश्य यह है कि प्रेम और सेवा का आदान प्रदान होते रहे। और जब कोई व्यक्ति निराकारवाद को स्वीकार करके इस अस्तित्व को ही तोड़ देना चाहता है, नकारना चाहता है, तो ये भक्तों को अच्छा नहीं लगता। वैसे तो आत्मा जाकर प्रकाश में केवल स्थित हो जाता है, आत्मा आत्मा रह जाता है। जैसे एक तोता हरे रंग का होता है, हरे रंग का तोता एक हरे वृक्ष में जाता है, हमें लगता है कि वृक्ष लीन हो गया, वृक्ष में लीन हो गया, तोता खत्म हो गया। तोता है, वृक्ष भी है, उसके अंदर उसका अस्तित्व है। उसी तरह से जब आत्मा भगवान के निराकार प्रकाश में लीन हो जाती है, आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। लेकिन क्योंकि आत्मा की भावना ऐसी है कि मैं भगवान में लीन होना चाहता हूं, तो भगवान प्रकाश में उन्हें स्वीकार कर देते हैं। तो क्योंकि सेवा का मौका नहीं मिलता है ब्रह्म ज्योति में लीन होने से, इसलिए भक्त लोग इससे घृणा करते हैं। क्योंकि ये सेवा में अड़चन है। भक्त लोग ऐसे किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं जो कि भगवान की सेवा में एक बंधन बन जाए। अगर धन आए और वो धन भगवान की सेवा में बंधन बन जाए उसको त्यागेंगे। अगर धन भगवान की सेवा में लाभदायक हो तो ज्यादा से ज्यादा धन लेंगे। तो धन में कोई बुराई या अच्छाई नहीं है, भक्त के चित्त के ऊपर है। ये चीज का प्रयोग करके भक्त की भक्ति नष्ट होगी या उसके भक्ति का विकास होगा, उस आधार पर भक्त को निर्णय लेना चाहिए कि ये चीज को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। इसलिए शरणागति के लक्षण में सनातन गोस्वामी बताते हैं पहले दो लक्षण, अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम्। जो चीजें भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं, लाभदायक हैं, उनको दृढ़ता से संकल्प से स्वीकार करना चाहिए, और जो चीजें भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल हैं उतने ही संकल्प करके उनको त्यागना चाहिए। तो इसलिए भक्त लोग ये मायावाद दर्शन के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। और हम देखते हैं कि जो भी चार वैष्णव संप्रदाय हैं उन्होंने एक आवाज में ये निराकारवाद या मायावाद का सख्त खंडन किया है, चाहे वो मध्वाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, निम्बारकाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, चैतन्य महाप्रभु हो, कोई भी वैष्णव आचार्य हुए हो, इस दर्शन का उन्होंने सख्त खंडन किया है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये पहले मायावाद के अनुयायी थे और सबसे बड़े नेता थे, इतने बड़े पंडित थे कि सारे देश में उनका वो प्रसिद्ध थे। वो राजा के तो मंत्री थे, एडवाइजर सहायक थे, वो सलाहकार थे और वास्तव में बड़े पंडित थे, सारे शास्त्रों को जानते थे। केवल फर्क इतना था कि भगवान के अस्तित्व को नहीं जान पाए थे, भगवान के रूप को नहीं जान पाए थे, जो कि केवल चैतन्य महाप्रभु के कृपा से वो जान पाए। अब निराकारवाद के दर्शन के बाद भक्त बन गए। अब उनको पता चला कि मैं पहले कितने गलत काम कर रहा था। जैसे कि भक्ति में आने के पहले ऐसे होता है कि कई लोग हो सकता है शराब पी रहे थे या कोई मांसाहार कर रहे थे, तो भक्ति में आने के बाद जब अटूट श्रद्धा हो जाती है तो उन्हीं कार्यों से बहुत घृणा होने लगती है, खास करके वो कार्य जो कि वो कर रहे थे पहले। सोचते थे कि मैं कितना पापी था, ये सब मैं कार्य करता था भक्ति में आने के पहले, छी 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 छी। उन्हीं चीजों से ज्यादा ये होता है। एक भक्त बता रहे थे कि मैं पहले प्याज के बिना जी नहीं सकता था, हर चीज में मुझे ताजा ताजा फ्रेश प्याज चाहिए था, उसको काट के फिर मैं लगाता था और वैसे बड़े बड़े प्याज में खा जाता था। लेकिन वो कहता भक्ति में आने के बाद जब एक बार मैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बाहर, वो जो रास्ते में बेचते हैं खाना वगैरह, वो कुछ बना रहे थे खाना अपने हाथ गाड़ी में, और वहां पे वो तल रहा था, कुछ हो रहा था, वो प्याज का बास आया, मुझे इतना घृणा हुई उस समय, इतनी घृणा हुई कि मैं वहां से क्रोधित होकर निकल गया, तो पास में भी रुक नहीं पाया, हालांकि मैं काफी दूर था, लेकिन एक बार केवल गंध आया तो बहुत घृणा हो गई। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन खतरा यह भी है कि अगर भक्ति में हम कोई लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं, तो भगवान हमारे जो संरक्षण है उसको निकाल देते हैं, और जो काम हम भक्ति में आने के पहले करते थे वही काम करने में वापस हम चले जाएंगे। पहले जिन कार्यों में आसक्ति थी, जब भक्ति में सुदृढ़ हो जाते हैं तो उन कामों से नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है, लेकिन भक्ति में लापरवाही करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे, हम हरिनाम नहीं लेंगे, अभक्तों का ज्यादा संग करेंगे, हम थोड़े आलसी हो गए हमारे साधना में भक्ति में, तो धीरे धीरे से हम फिसलते जाएंगे भक्ति में, कमजोर हो जाएंगे। और अगर पूरी तरह से पतन हो गया तो पतन होने के बाद क्या करेंगे, वही कार्य जो पहले हम करते थे, जिनके प्रति हम पहले आसक्त थे फिर जिनके प्रति घृणा करने लगे और फिर से आसक्त हो गए। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो हमेशा सतर्क रहे, अपने नियमों के पालन में पक्का रहे, कभी लापरवाही नहीं करे अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य अभी भक्त बने थे, कट्टर भक्त बने थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुक्ति शब्द सुनकर ही मुझे वो सब याद आता है, अरे लीन हो जाना, अस्तित्व नष्ट करना, इसलिए मैंने मुक्ति शब्द को ही प्रयोग नहीं किया। तो मुक्ति को काट ही डाला मैंने, भक्ति डाल दिया उसमें। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो तुम्हारी भावना ठीक है, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत है, ये शास्त्र का शब्द है, तुम उसको बदल नहीं सकते ऐसे। तुम्हारी भावना जो भी हो, लेकिन शास्त्रों के वचन को बदला नहीं जा सकता है। और वैसे भी सच्ची मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, कि मुक्ति का सच्चा अर्थ होता है स्वरूप में स्थित होना। मुक्तिर अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में स्थित होकर अन्य चीजों को त्याग करना, इसको मुक्ति कहते हैं। अपना स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो हम कृष्ण दास हैं। अगर हम कृष्ण दास बन गए, अर्थात कृष्ण के भक्त बन गए, तो हम मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा कृष्णदास नहीं बनना चाहिए कि मंदिर में भी आते, जब भी करते, सिनेमा भी देखते हैं, होटल भी जाते हैं, टीवी भी देखते हैं, बीच बीच में कुछ इधर उधर वो भी कर देते हैं, ऐसा कृष्ण भक्त नहीं। कृष्णदास मतलब जो सुदृढ़ है कृष्ण भक्ति में। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता के 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना पतन हुए, बिना पतित हुए, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग में मेरी सेवा करता है, सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, गुणों को सत्वगुण रजगुण तमोगुण के परे स्थित हो जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत अवस्था में आत्मा के स्तर में स्थित हो जाता है, क्योंकि वो कृष्णदास है। कृष्णदास मतलब कृष्ण की सेवा करता है। सेवक होने का मतलब है सेवा करना। अगर हम अपने आप को सेवक कहलाएं और सेवा नहीं करें तो कैसे सेवक हुए हम? तो कृष्णदास मतलब कृष्ण की सेवा करते रहना। और अगर इस तरह से बिना पतित हुए हम सेवा करते रहेंगे तो हम आध्यात्मिक स्तर में स्थित हो जाएंगे, और ऐसे स्तर में हम मुक्त कहलाते हैं। जीते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी हम मुक्त पुरुष कहलाते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने जीवन मुक्त कौन होता है इसकी परिभाषा दी है। यह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। वो कहते हैं इह यस्य हरेर दास्य, जो हरि का दास है, कर्मणा अपने कर्मों से, मनसा अपने मन से, गिरा अपने शब्दों से, वो हमेशा भगवान की सेवा करते रहता है सतत। निखिलाश्व अप्यवस्थासु, हमेशा ऐसे अवस्था में रहता है कि अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचनों से भगवान की सेवा करता हो तो क्या कहलाता है? जीवन मुक्त स उच्यते। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है। तो चैतन्य महाप्रभु समझाना चाहते थे सार्वभौम भट्टाचार्य को कि सही मुक्ति का मतलब तो ये है कि कृष्ण भक्ति में स्थित हो जाना, अपना स्वरूप में स्थित हो जाना। जो निराकारवादी है वो लोग सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब है लीन हो जाना, लेकिन मुक्ति का अर्थ एक नहीं है, कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि नरक से मुक्त होना, पुन्नामत्रायते इति पुत्रः, पुत्र वो है जो पिंडदान इत्यादि श्राद्ध करके अपने पितरों को पू नाम के नरक से मुक्त करा दे, वो भी एक प्रकार की मुक्ति है। डॉक्टर है जो हमें दवाई देकर हमें रोग से मुक्त करा देता है, कोई कष्ट से मुक्त करा देता है, तो कई तरह की मुक्ति हो सकती है। तो मायावादियों की मुक्ति यह है ये निराकार में लीन हो जाना। लेकिन सही मुक्ति ये नहीं है। सही मुक्ति क्या है? स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो चैतन्य महाप्रभु समझाने लगे, ठीक है तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन शास्त्रों का शब्द नहीं बदल सकते। फिर भी सर्वम भट्टाचार्य ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो मुक्ति वो शब्द नहीं, हमको भक्ति पद, भक्ति पद बहुत अच्छा है कि हमको भक्ति पद में स्थित होना चाहिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य को मुक्ति का तत्व कितना अच्छी तरह से मालूम था, और मुक्ति के तत्व को ज्यादा प्रदर्शित करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को वाहन बनाया। ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को भी एक निमित्त बनाया। किस चीज के लिए, किस ज्ञान को देने के लिए? रूप गोस्वामी ने जिस तरह से विश्लेषण किया अलग अलग तरह से तरह के रसों के, कि भगवान की सेवा करने के कौन सी अलग अलग रस होते हैं, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुरी रस, अलग अलग भाव, इनमें बड़े निपुण थे रूप गोस्वामी। इसलिए उनके माध्यम से ये तत्व का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया, और रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त की दशाश्वमेध घाट में, प्रयागराज में। और उसके बाद लगातार 10 दिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जैसे कि सबसे प्रमुख कौन सा उनका ग्रंथ है? भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के रस के अमृत का सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, लघु भागवतामृत, उपदेशामृत इत्यादि, ऐसे कई ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों के मुंह से, मुखारविंद से, उन्हीं की शिक्षा सारे दुनिया के हित के लिए प्रचार करवाया। श्रेय उन भक्तों को गया। तो इसी तरह से हरिदास ठाकुर के माध्यम से उन्होंने हरि नाम का गुणगान कराया। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, ऐसे कई ग्रंथों में हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन आता है, और कई घटनाएं आती हैं, लीलाएं आती हैं, जहां हरिदास ठाकुर ने व्याख्या की हरि नाम के ऊपर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इन सारे अलग अलग घटनाओं से और एक किताब से जानकारी लेकर ये हरिनाम चिंतामणि किताब लिखी। ये और एक किताब कौन सी थी? उनको एक किताब मिला जिसमें एक शुद्ध वैष्णव ने हरिदास ठाकुर से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था हरिनाम के ऊपर, मतलब हरिदास ठाकुर ने उनको उपदेश दिया होगा प्रत्यक्ष रूप से। तो उस भक्त ने उस उपदेश को ग्रहण किया और फिर उसको किताब रूप में लिखा और इसका समर्पण हरिदास ठाकुर को किया था, और यह किताब भक्ति विनोद ठाकुर के हाथ में आ गई। तो इन सब किताबों के आधार पर उन्होंने ये हरिनाम चिंतामणि का ग्रंथ लिखा है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये ग्रंथ किसके लिए है? ये ग्रंथ केवल उन श्रद्धालु भक्तों के लिए है जो पूरी तरह से भगवान के शरण में आए हैं, जिन्होंने पूरी तरह से हरिनाम का आश्रय लिया है, जिनको चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूर्ण अटूट विश्वास है, श्रद्धा है। ये अश्रद्धालु भौतिकवादी लोगों के लिए यह किताब नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। हरिनाम के प्रति 10 अपराध है ना, 9वां अपराध कौन सा है? अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, क्योंकि अश्रद्धालु लोग हरिनाम को समझ नहीं पाएंगे। अरे अरे क्या बोलते हो, हरिनाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी, वो ऐसा बोलेंगे जैसे हरिदास ठाकुर के साथ हुआ था। इन लीलाओं का वर्णन अगले एकादशियों में करेंगे। तो ऐसे अश्रद्धालु लोगों को उनके स्तर पे हमें बताना चाहिए, आत्मा शरीर इत्यादि। तो ये श्रद्धालु भक्तों के लिए है, इसलिए अगली बार से पहले अध्याय से ये हरिनाम चिंतामणि शुरू करेंगे। तो कृपया अगले एकादशी को 5 बजे ठीक ये हरिनाम चिंतामणि में अलग अलग प्रश्न जो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर को, वो हम सुनेंगे, और हरिदास ठाकुर क्या जवाब देते हैं हम वो भी सुनेंगे हरिनाम के ऊपर। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। गौर प्रेमानंदे। ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. पिछले कई एकादशियों से हम श्रीमद् भागवत में नारद मुनि के उपदेशों को सुनते भी आए हैं. सुबह नारद मुनि जब उनके शिष्य श्रील वेद व्यास जी को बताते हैं कि वेद व्यास जी के असंतुष्ट होने का कारण ये है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विस्तार में नहीं किया है, उन्होंने और बहुत कुछ के बारे में चर्चा किया है. उपनिषद लिखे हैं, वेद पुराण लिखे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु नहीं बनाया. और इस उपदेश के दौरान वो भक्ति मार्ग की महानता, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं. और आपको याद होगा कि भक्ति का वर्णन करते करते उन्होंने वो महत्वपूर्ण श्लोक कहा था, चत्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन न पक्वो तपते ततो यदि यत्रक्ववा भद्रम भूतमुश्चिकिं को वार्थ आप्तुम अभजताम स्वधर्मतः. कि अगर कोई व्यक्ति अपना सब कुछ, अपने स्वधर्म को, भौतिक कर्तव्यों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है और बाद में कच्चे अवस्था में होने के कारण, उसका भजन पक्का न होने के कारण अगर उसका पतन हो जाता है, पतित ततो यदि, जरूरी नहीं है कि पतन होगा, लेकिन अगर हो भी, यदि हो जाए तो क्या नुकसान है. और दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहा है भौतिक दृष्टि से, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो उसने क्या पाया है. तो भगवान के भक्त ने जो भक्ति की है, बल्कि वो थोड़े समय के लिए क्यों न की हो, लेकिन जो उसने पाया है वो शाश्वत है, हमेशा रहेगा. और जब खो जाएगा, उसे खो देगा वो, या भक्ति से उसका पतन होगा, पथ भ्रष्ट होगा, फिर भी जो भी लाभ उसने पाया है वो उसके साथ ही रहेगा हमेशा के लिए, कभी खो नहीं जाएगा. नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस भागवत धर्म के मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा डर, जो कि नीच योनियों में जाना या भगवान को भूल जाना, इन डरों से वो मुक्त रहता है. अगले जन्म में भी वो अपने भक्ति को जारी रख सकता है. अगर व्यक्ति ने 10% भक्ति मार्ग में प्रगति कर ली हो इस जन्म में, तो अगले जन्म में उसे संधि मिलेगी 10% से शुरू करने के लिए. उसकी श्रद्धा 10% के स्तर पर होगी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा 20%, 30%, 40, और अगर फिर भी उस जन्म में वो भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया, समझ लीजिए 90% उसने हासिल कर लिया, तो तीसरे जन्म में वो 90% से शुरू करेगा. मतलब बचपन से ही वो बहुत आकर्षित हो जाएगा भक्ति मार्ग के प्रति और बहुत ही जल्दी प्रगति कर लेगा इसमें. तो इस तरह से भक्ति मार्ग में जो भी हम आध्यात्मिक सुकृति प्राप्त करते हैं वो कभी हम खो नहीं सकते, लेकिन भौतिक प्रयास से जो भी हमें प्राप्त होता है उसका 100% हम इसी जीवन में खोने वाले हैं, आज नहीं तो कल, अंततः मृत्यु के समय तो निश्चित ही खोएंगे. इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने भौतिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से संभाल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसको क्या मिला है. जब उसकी मृत्यु हो जाएगी जो भी उसने कुछ पाया है, जो भी उसने कुछ किया है, जिन व्यक्तियों के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, वो सब अलग हो जाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति जिसने थोड़ी बहुत भी भक्ति क्यों ना की हो, उसने हमेशा के लिए कुछ तो प्राप्त किया है, ऐसी चीज को प्राप्त किया जो कि कभी भी उससे अलग नहीं किया जा सकता है। भगवान की भक्ति का बैंक अकाउंट ऐसे है जो जन्म जन्मांतर से चलता है। अगर इस जन्म में हमने उसमें डिपॉजिट किया है, भर्ती की है, तो वो जो पूंजी है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन आज अगर हमने या बैंक में 1,00,000 रुपए डिपॉजिट किए और कल हमारी मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं कि अगला जन्म जब हो जाएगा और हमें याद भी रहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था, मैं बैंक मैनेजर के पास जाऊं, अभी ये मेरे पास आना चाहिए, पिछले जन्म में मेरा था, बैंक मैनेजर भगा देगा हमें। तो पिछले जन्म में हुआ होगा, अगर वो पुनर्जन्म में विश्वास करता भी है, फिर भी वो कहेगा पिछले जन्म में जो हुआ सो निकल गया, अभी तो आपके हवाले नहीं है। तो अपने कर्म के हिसाब से जो हमें मिलना है, ऐसे अमीर या गरीब परिवार में हम जन्म लेंगे। तो पिछले जन्म में कितने भी लाखों रुपए हमें कमाए हो, मृत्यु के एक क्षण पहले भी, लेकिन एक बार मृत्यु हो जाती है सब क्षीण हो जाता है, खत्म। इसलिए भक्ति ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। और आगे 19वें श्लोक में भी नारद मुनि इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे थोड़ी बहुत भक्ति करने से भी कितना लाभ होता है, और थोड़ा बहुत भक्ति करके अगर किसी का पतन हो, फिर इसमें किस तरह से व्यक्ति फिर भी सुरक्षित रहता है, कैसे उसे भगवान फिर से उनके चरणों में लेकर आते हैं। नवै जनो जातु कथान चाव्रजेन मुकुंद सेव्यं वयदंग संस्मृतिं स्मरन् मुकुंदांग्रिपगोहनं पुनः विहातुमिच्छेन् नरसग्रहो जनः। मेरे प्रिय व्यास, हालांकि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी तरह से पथ भ्रष्ट हो भी सकता है, उसका पतन हो भी सकता है, लेकिन फिर भी वो दूसरे साधारण व्यक्तियों की तरह है, मतलब जो अभक्त हैं, उनकी तरह वो संसार में रहता नहीं है। क्योंकि एक बार किसी भी व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों के सेवा का स्वाद चख लिया है, तो केवल उस स्वाद को, उस रस को, उस आनंद को स्मरण करते रहेगा, और इसके अलावा उसको कोई उपाय नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को कि अगर एक बार किसी ने हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, तो उसको वो स्वाद मिलेगा, वो रस मिलेगा उस भक्ति का, और किसी न किसी कारण से उसने अगर ये भक्ति को छोड़ दिया, माया का प्रभाव हुआ, उसकी पुरानी आदतें ज्यादा प्रबल थी, उसने वैष्णव अपराध किया, कुछ भी हुआ हो, वो पथभ्रष्ट हो गया, लेकिन वो कभी भी उस आनंद को भूल नहीं पाएगा। उस रस का जो आस्वादन उसने किया था जब वो भगवान कृष्ण की सेवा करता था, वो आनंद के दिन जब वो भक्तों के बीच में आकर कीर्तन करता था, प्रसाद लेता था, सत्संग में बैठता था, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करता था, भागवत का आनंद लेता था, गीता पढ़ता था, वो जो आनंद उसे मिला, उस रस का स्वाद हमेशा वो करता रहेगा। थोड़े समय के लिए भले वो भूल भी जाए, कोई गुस्सा हो गया है, कोई निराश हो गया है, इस वजह से हो सकता है कि वो सोचता है कि अच्छा हुआ मैं भक्ति छोड़ के चला गया, ऐसे भी कई बार होता है, किसी न किसी वजह से भक्त छोड़ जाता है और निराश होकर गुस्सा होकर जाता है, कहता कि आप कभी नहीं मैं आऊंगा भक्ति मार्ग, बहुत हो गया, बिल्कुल मेरा समय व्यर्थ गया, इतने साल मैंने बिताए, 10 साल में संस्था में रहा, केवल समय बर्बाद किया और कुछ नहीं किया, मतलब व्यक्ति इतना निराश हो जाता है, कोई इतनी बड़ी गलती कर बैठता है जिसकी वजह से भगवान उसके हृदय से सारा रस निकाल देते हैं, रसहीन कर देते हैं उसको, और फिर वो इतना निराश हो जाता है, इतना सूखा उसका हृदय बन जाता है कि वो भक्ति के प्रति ऐसी भावना रखता है, भक्तों के प्रति भी। और ज्यादातर इसके लिए वैष्णव अपराधी जिम्मेदार है। अगर व्यक्ति कोई कमजोरी की वजह से, जो कि पुराने आदतों से उत्पन्न हुआ है, उसकी वजह से अगर उसका पतन हो जाए, वो शर्म के मारे या और किसी कारण से वो शायद नहीं आ सकता है भक्ति में तीव्रता से, लेकिन भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति वो गलत भावना नहीं रखेगा। भक्तों के प्रति, भक्ति मार्ग के प्रति, भगवान के प्रति उसकी भावना में हमेशा ये लालसा रहेगी कि हाँ कब मैं वापस आके उत्साह से कर सकूंगा, मैं कितना पतित हूं, ठीक है मैं नहीं कर पाया, फिर भी मैं रह के कोशिश करूंगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने बहुत द्वेष किया है, भक्तों से अपराध किया है, तो फिर भगवान उसका वो रस निकाल देते हैं, फिर बाद में वो ईर्ष्या करने लगता है, भक्ति मार्ग को छोड़ ही देता है। जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे तो उनके भक्तों के साथ साथ एक बार एक सन्यासी भी आए जिनका नाम था रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु भाई थे। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली थी और रामचंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, मतलब दोनों ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, शुद्ध भक्त के रूप में आए थे, हर दृष्टि से, एक दृष्टि से देखा जाए तो वो, उनको रामचंद्रपुरी के प्रति सम्मान की भावना रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो अपने गुरु के गुरु भाई थे इसलिए उन्होंने रामचंद्रपुरी को बहुत सम्मान दिया, आदर दिया। और रामचंद्रपुरी का स्वभाव ऐसे था कि वो हमेशा दूसरों में दोष देखते थे, और उनको जगन्नाथपुरी आने का उद्देश्य यह था, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के बारे में बहुत कुछ सुना था कि ये लोग कितना अच्छा भक्ति करते हैं, बहुत कुछ भक्त हैं, भक्तों का आंदोलन बहुत बढ़ रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसिद्ध हो रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सुना था। तो इस उद्देश्य से आए हैं कि दोष ढूंढते हैं हमने, और जैसे ही आए दोष ढूंढना शुरू कर दिया। तो पहले तो वो भक्तों को बुलाते थे प्रसाद के लिए अपने निवास स्थान में, और जब उनको थाली में वो प्रसाद देते थे, फिर बाद में बार बार आके जबरदस्ती उनको और खिलाते थे, खाओ 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 और खाओ, पेट भर के खाओ, खाना चाहिए, लेना चाहिए, प्रसाद है, जगन्नाथ प्रसाद है, तो खिलाते और बाद में फिर टीका करते हैं, देखो ये सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त कितना खाते हैं, देखो, अरे भक्त को इंद्रियों को नियम करना, वश में करना चाहिए, और ये दुख कैसे खाते खाते रहे, हमने दिया थोड़ी उनको स्वीकार करना चाहिए, मना करना चाहिए। तो इस तरह से वो निंदा करते रहते। और एक बार वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए जहां वो निवास करते थे, उनकी दृष्टि केवल थी, क्या भूल चूक दिखाई पड़ सकती है। अचानक उन्होंने रास्ते में देखा थोड़ी चींटियां आ रही थी, वहां से चींटियों का लाइन जा रहा था कहीं कोने से, तो उन्होंने कहा हाँ देखो चींटियां, और ये भी सन्यासी के कमरे में, इसका मतलब है कि ये सन्यासी छुपे छुपे कोई मिठाइयां स्वीट्स खा रहा है, ये तो चींटियां क्यों आएंगे। तो सन्यासी को ऐसे आहार पर नियंत्रण करना चाहिए, ऐसे खाना नहीं चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे चींटियां तो कहीं भी जाती है, जहां एक कण भी भोजन नहीं वहां भी जाती है चींटियां, तो यहां वहां सब जगह होती है। लेकिन फिर भी रामचंद्रपुरी ने यह उचित समझा कि वो ऐसे दोष ढूंढे न केवल एक शुद्ध भक्त और सन्यासी में लेकिन स्वयं भगवान में। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस दिन से ठान लिया कि अब मैं जो भी खा रहा हूं उससे मैं बहुत कम खाऊंगा, और प्राय उनका प्रसाद लेना ही बंद हो गया, इतना सा ले लेते थे। भक्त लोग बहुत दुखी हो गए, मन ही मन सब लोग रामचंद्रपुरी को कोसते थे, क्योंकि सन्यासी हैं कोई बोल नहीं सकते, इसलिए कुछ बाहर से शायद बोले भी होंगे, कम भी बोला होगा, लेकिन इस तरह से रामचंद्र पुरी हमेशा करते थे। फिर बाद में भक्तों के कहने से, बार बार कहने से चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है मैं प्रसाद लेना थोड़ा बढ़ा दूंगा। लेकिन कितना बढ़ाया, पहले जो नॉर्मल जो लेते थे उसका आधा भी हो गया अभी। तो ऐसे समय बीतता गया और आगे चल के फिर ये रामचंद्र पुरी को भक्ति मार्ग में बिल्कुल रुचि चली गई और वह एक शुष्क ज्ञानी बने और आगे चल के उन्होंने अपने गुरु में भी दोष देखना शुरू किया। और जब गुरु अपना शरीर छोड़ने जा रहे थे अंतकाल में, तो वो कृष्ण भगवान का स्मरण करते करते शोक कर रहे थे गोपियों के भाव में, जैसे गोपियां विप्रलंब सेवा करती थी कृष्ण के विरह में, वो हमेशा कृष्ण का याद की याद करती थी कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ने भी माधवेंद्र पुरी से ये सब कि उनके परंपरा में चले, तो उन्होंने जाके अपने गुरु से कहने लगे कि अरे ये क्या आप रो रहे हो, आप तो आपको ब्रह्मभूत स्तर पर स्थित होना चाहिए। ब्रह्मभूत स्तर में न शोचती न कांक्षती सम सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, आपको प्रसन्न होना चाहिए हर अवस्था में। आप एक साधारण व्यक्ति की तरह इतना शोक कर रहे हैं, वो भी मृत्यु के समय, आपको समान दृष्टि रखनी चाहिए, आपको निराकार ब्रह्म के ऊपर आपका मन केंद्रित करना चाहिए। ये भावुक व्यक्ति की तरह है, कृष्ण हा कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो उस समय माधवेंद्र पुरी जो कि ब्रह्मभूत के सर्वोच्च स्तर पर स्थित थे, उनको आया बड़ा गुस्सा और उन्होंने कहा कि निकल जाओ तुम मेरे सामने से, अगर तुम मेरी मृत्यु तुम्हारे सामने हुई और तुम मेरे सामने होते हुए मैं तुम्हें देखते देखते यहां प्राण त्यागूंगा तो मेरी क्या गति होगी मुझे भगवान जाने, मेरी तो बहुत दुर्गति होगी, तुम निकल जाओ यहां से, मेरे सामने भी मत बैठो। ये लंबा प्रसंग आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो रामचंद्र पुरी को उन्होंने वहां से निकाल दिया, कहा कि चले जाओ यहां से। लेकिन दूसरी ओर ईश्वर पुरी जो थे उनके गुरु भाई, मतलब रामचंद्र पुरी के गुरु भाई, उन्होंने अपने गुरु की सेवा बहुत अच्छी तरह से की थी। आप तो जानते हैं कि बुढ़ापे में शरीर की क्या हालत होती है और खास करके मृत्यु के शैया पर जब व्यक्ति रहता है तो किस तरह की सेवा करनी पड़ती है। तो ईश्वर पुरी ने बड़े हृदय से प्रेम से सेवा की माधवेंद्र पुरी की और माधवेंद्र पुरी ने उनको हृदय से आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रेम पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाए। तो दोनों शिष्य इनकी गति अलग अलग हुई। ईश्वर पुरी तो आगे चल के शुद्ध भक्त हो गए और उनको चैतन्य महाप्रभु शिष्य के रूप में मिले। दूसरी ओर रामचंद्र पुरी एक शुष्क निराकारवादी बन गए, मायावादी, बिल्कुल भक्ति से पदभ्रष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णवों की निंदा की थी, वैष्णवों में दोष देखे थे, वैष्णवों को भक्ति मार्ग को सस्ता समझा था, इसलिए उनका पतन हो गया और इसलिए भक्ति और भक्तों के प्रति भी उन्होंने गलत दृष्टि रखी। तो ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल कमजोरी से इंद्रियों के विषयों का जो आकर्षण है वो ज्यादा प्रबल होने के कारण से, भक्ति में कच्चे होने के कारण से अगर उसका पतन हो जाता है, तो फिर भी वो अनुकूल भावना तो रखता है और इसका वर्णन यहां पर प्रभुपाद जी नारद मुनि कर रहे हैं। कहते हैं कि वो उन क्षणों को, उन घटनाओं को हमेशा याद करेगा। हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्था चालू की, कैसे कैसे लोगों के पास वो गए थे, हिप्पी लोगों के पास, जहां पर लोग शराबी थे, व्यभिचारी थे और हर प्रकार के पाप वो करते थे। बचपन से उनको ये ऐसे प्रशिक्षण मिला था, ऐसे संस्कृति में, ऐसे वातावरण में थे वो, और ऐसे लोगों को जाकर उन्होंने भक्त बनाया, वो भी तरुण अवस्था में। उनको ये आदतें तरुण अवस्था में त्याग करने के लिए प्रेरित किया और ये सब अपना सब कुछ त्याग कर प्रभुपाद के शरण में आए। तो ये प्रभुपाद ने चमत्कार कर दिखाया और इस तरह से थोड़े ही सालों में ये संस्था बहुत बढ़ी, कई केंद्र हो गए और केवल 12 साल में 108 मंदिरों का निर्माण किया प्रभुपाद जी ने। 14 बार वो विश्व का भ्रमण कर चुके,
कई देशों में, हर एक देश में प्राय गए थे और उन्होंने 10,000 शिष्यों को प्राय दीक्षा दे दी। उस समय दीक्षा के नियम भी काफी हल्के हुआ करते थे, खास करके शुरुआत में, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं था कि दीक्षा क्या होता है। आजकल संस्था में दीक्षा के लिए नियम काफी कठोर हो गए हैं, क्योंकि अनुभव से सीखे हैं और अभी जैसे जैसे संस्था आगे चलती है तो नियम भी कड़क होते जाते हैं, जैसे होना चाहिए। जैसे अभी बताया जाता है कि 4 नियमों का पालन कम से कम अमुक समय तक करना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 16 माला का जप कम से कम 1, 2, 3 साल करना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, व्यवहार ठीक होना चाहिए, ये होना वो होना, बहुत सारे शर्त रहती है। लेकिन उस समय जब पहली बार प्रभुपाद जी ने भक्तों को, एक ग्रुप को, 4-5 भक्त थे, उनको दीक्षा दी, तो उनको सुबह ही बताया कि आपको आज दीक्षा मैं दूंगा, और उनको 4 नियम क्या है ये मालूम नहीं। दीक्षा के बाद उनको बताया कि आपको ये 4 नियम का पालन करना चाहिए। वो हैरान हो गया है, ये 4 नियम का पालन हमें करना है, हमने कैसे, क्या मतलब इसका, व्यभिचार नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। लेकिन ये ऐसी अवस्था से प्रभुपाद जी ने चालू किया, क्योंकि अगर पहले ही सब प्रभुपाद जी सारे नियम बताते, पहले ही ऐसे बैकग्राउंड से, ऐसे वातावरण से आने वाले लोग थे, वो क्या कैसे आते। तो फिर खैर ऐसे जगह से, ऐसे स्तर से उनको उठाकर उन्होंने भक्त बनाया और ये सारे अच्छे भक्त हो गए। उनमें से कई आगे चल के बहुत प्रगतिशील भक्त बन, उन्नत भक्त बन गए, कई शुद्ध भक्त हुए हैं। कई लोगों ने संन्यास लिया, कई ने संन्यास नहीं भी लिया, लेकिन कितने ऊंचे पहुंचे हैं भक्ति मार्ग में, कई ऐसे हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि 10,000 लोगों को जब उन्होंने दीक्षा दी, 10 के 10,000 उत्साह से आज तक भी 30-35 साल बाद भक्ति कर रहे हों, ये कलयुग में, इस भौतिक जगत में कठिन है। इसलिए जैसे जैसे साल बीतते गए, प्रभुपाद की उपस्थिति में भी भक्त धीरे धीरे से पदभ्रष्ट होते गए, 1, 2, 3, और प्रभुपाद के धाम गोलोक वृंदावन लौटने के बाद, अर्थात उनके शरीर को त्यागने के बाद, कई भक्त एक 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 करके निकल गए। और आज जो जिन भक्तों को प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी थी, उनमें से जो एक्टिव, मतलब जो बहुत ही आगे बढ़ के भक्ति कर रहे हैं संस्था में, ऐसे कई 1,000-2,000 भी होंगे शायद, तो बाकी सब नहीं रहे। पहली बार दीक्षा के बाद जब संस्था नहीं थी, पहली बार जब एक भक्त भक्ति छोड़कर चला गया, मंदिर से भाग गया, क्योंकि उस टाइम तो केवल मंदिर में रहने वाले भक्त थे अमेरिका में, आज जैसे है वैसे नहीं था। आज कैसे है, मंदिर में थोड़े लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी लोग, और ज्यादातर भक्त अपने अपने घरों में रहते हैं। अगर हम 800 भक्त यहां हैं, उनमें से केवल 20 भक्त मंदिर में रहते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और अमेरिका में भी और यूरोप इत्यादि, वहां बाहर रह के भक्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना दूषित वातावरण है, इतनी प्रबल माया है वहां पर, बहुत कठिन है। तो मंदिर में रहकर ही आदमी भक्ति में टिक सकता था, क्योंकि भक्तों के संग में एक शक्ति होती है। और उस समय गृहस्थ लोग, ब्रह्मचारी लोग, सब लोग मंदिर में रहते थे, तो क्योंकि शुरुआत थी संस्था की, आंदोलन को बढ़ाना था, तो प्रभुपाद जी को इमरजेंसी तरकीबें निकालनी थी। तो ऐसे कई महीने बीत गए, भक्तों को उत्साह मिला भक्ति का, जैसे कि इसके पिछले प्रवचन में हम बता रहे थे, उत्साह, भक्ति की शुरुआत की उत्साह, बहुत उत्साही थे सब लोग। और फिर थोड़े महीनों के बाद, 1-2 साल बाद, पहली बार एक भक्त मंदिर छोड़कर निकल गया। सभी लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो गया। सब लोग प्रभुपाद के पास आए, भक्त कैसे चला गया मंदिर छोड़ के, भक्ति छोड़ दिया उसने, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है काम। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आश्चर्य की बात यह नहीं है कि कोई छोड़ के चला गया है, आश्चर्य की बात यह है कि आप सब अभी तक टिके हुए हो, क्योंकि ये कलयुग है और ये भी आपके पाश्चात्य देशों का वातावरण है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने कहा, वो कभी भूलेगा नहीं, जो उसने यहां पाया है, जो रस का आस्वादन उसने किया है, कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा उसको। तो इस तरह से प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य आज एक्टिव नहीं है भक्ति में। थोड़े हैं जो कि बहुत अच्छी भावना रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत शायद आगे आने में उनको हिचकिचाहट होती हो। थोड़े लोग ऐसे हैं जो शायद पूरी तरह से छोड़ के चले गए हों, और थोड़े लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली शायद 16 माला भी जाप ना करते हों।